समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में शामिल, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। दोस्तों, धीरे धीरे गर्माते मौसम के मिजाज के नाम इस शेर के साथ करते हैं आज परिक्रमा का आगाज। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आपका दोस्तों। आधा घंटे की हमारी इस मुलाकात में होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, फिर चलेंगे हम अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा रोज की तरह खेल गतिविधियों पर रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या फिर जन्मदिन। दोस्तों, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा और मेरे साथ हैं आपकी जानी पहचानी हर दिल अजीज अनुजा। नमस्कार अनुजा
जी। नमस्कार मुनीश, एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। यस, धूप तो बहुत तेज हो ही गई है, बट द सिटी ऑफ दिल्ली इज ऑल्सो बिजी विद द एआई समिट गोइंग ऑन हियर दीज डेज।
एआई समिट एंड अनदर आई थिंक ग्रेट क्राउड पुलर इज पलाश महोत्सव, Festival
right.
of Palash.
Absolutely. So since we were talking about AI Summit, and that will be the dateline topic also in our segment today, but our Prime Minister has underscored that artificial intelligence must be developed and deployed for the larger public good. And he said that intelligence, rationality and decision-making ability makes science and technology meaningful for society. And this brought the AI Summit to India, a first in the Global South. Running alongside the summit is the India AI Impact Expo, which has brought together global technology firms, startups, academia, research institutions, union ministries and state governments. Amazing, isn't it, Munish? Did you ever think like something like this will be coming up in front of us?
Well, I didn't imagine, at least not 5 years ago. I couldn't think of it
right.
The way it is, you know, coming up.
In fact, yes, and AI has become indispensable for modern life, acting as a critical tool that boosts productivity, enhances communication, and automates complex, repetitive tasks across industries. While AI is crucial, it operates best as a tool requiring human oversight rather than a complete replacement for human recognition, of course. So it cannot, for example, replace human judgment or empathy, making it most effective when paired with human expertise. And today in our Dateline section, we will talk about on the ongoing India AI Summit in New Delhi. But before that, let's start with news headlines of the day.
जी हाँ, सबसे पहले मुख्य समाचार। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को सशक्त और सूचना समृद्ध बनाने के उद्देश्य से भारत विस्तार नामक डिजिटल पहल का शुभारंभ किया।
Prime Minister Narendra Modi expresses confidence that his meeting with French President Emmanuel Macron will strengthen bilateral ties and global progress.
सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत अगले दो साल में देश के एआई इकोसिस्टम में 200 अरब डॉलर से अधिक का निवेश आकर्षित करने के लिए है तैयार। और गृहमंत्री अमित शाह गांधीनगर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों के उच्च स्तरीय राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए।
बीएनपी चीफ तारिक रहमान स्वोन इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अटेंड्स द स्वेरिंग इन सेरेमनी। एंड इन द आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप, न्यूजीलैंड बीट्स कनाडा बाय 8 विकेट्स इन ग्रुप डी मैच इन चेन्नई। And as I said, it's now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about Waves Creators Corner at India AI Impact Summit. Munish, the India AI Impact Summit 2026 is underway at Bharat Mandapam in New Delhi. The five-day summit is the first ever global AI summit to be hosted in the Global South, and the world leaders from 20 nations are attending the event. We have a report.
India AI Impact Summit 2026 is focusing on strengthening global collaboration, promoting responsible and ethical AI, and accelerating AI adoption across priority sectors of the economy. The five-day summit is expected to play a catalytic role in positioning India as a global hub for AI innovation and deployment, aligned with the vision of digitally empowered and technology-driven India. On the second day of the summit, knowledge compendiums on AI in health, energy, education, agriculture, gender empowerment and accessibility will be released today. Minister of State for Health Anupriya Patel today participated in a session on the theme Innovation to Impact AI as a Public Health Game Changer. And Education Minister Dharmendra Pradhan addressed the session on pushing the frontier of AI in India. A series of high-level panel discussions is being held focused on harnessing artificial intelligence for inclusive and transformative growth. Pallavi Parmar, Akashwani News, Delhi.
Definitely, Anuja, we have to admit that AI is definitely flavor of the season for every valid reason. सूचना और प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि भारत को अगले दो साल में एआई में 200 अरब डॉलर से अधिक के निवेश की उम्मीद है. आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 के अवसर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि शिखर सम्मेलन को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है जिससे देश के कोने कोने से लोग इसमें भाग लेने के लिए आ रहे हैं.
And he also added that India will strive to build a consensus among global leaders on the proper and responsible use of AI so that it can be utilized for the benefit of humanity. Mr. Vaishnaw highlighted that there are real difficulties and hurdles in the AI ecosystem that must be addressed through a techno-legal approach. He said these challenges cannot be resolved merely through regulations or by passing a law alone.
Young people have come to this summit in a very large number. I interacted with many startups, with many students who have come from various colleges. Some people have come from faraway places. So huge response is there. We can see the enthusiasm, it's palpable. We can see the interest of the global leaders, that's visible. We can see the investment opportunity that is today countable. It's going to be probably over the next 2 years, more than $200 billion worth investment is likely to come.
And the 21st century is being shaped as much by imagination as by industry. Economic strength is no longer measured only in factories and freight corridors, but in intellectual property, digital platforms and cultural influence. Ideas travel faster than goods, narratives move markets, and creative ecosystems increasingly determine how nations are seen, heard and partnered globally.
और खास बात यह है अनुजा कि इस परिवेश में रचनात्मक अर्थव्यवस्था जो है वो विकास और रणनीतिक उपस्थिति के एक निर्णायक क्षेत्र के रूप में उभर करके सामने आई है. और भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था विकास, रोजगार और मूल्य सृजन का एक प्रमुख स्तंभ बनकर के उभर रही है.
And in a major boost to India's emerging media and entertainment innovation ecosystem, 51 promising startups from the AVGCXR, that is animation, visual effects, gaming, comics and extended reality and media tech sector is showcasing their products and technologies at the Waves Creators Corner, powered by the Ministry of Information and Broadcasting, during the India AI Impact Expo 2026. The expo is being held at Bharat Mandapam on the sidelines of the India AI Impact Summit.
और दोस्तों खास बात यहाँ ये है और तलब की इन स्टार्टअप्स की भागीदारी वेवएक्स के सहयोग से ही संभव हो पाई है जो भारत की नवाचार आधारित रचनात्मक अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूत कर रहा है. वेव्स क्रिएटर्स कॉर्नर स्टार्टअप्स के लिए गतिशील मंच के तौर पर काम करेगा जहां वो उद्योग जगत के नेताओं, निवेशकों, नीति निर्माताओं और वैश्विक हितधारकों के सामने एआई संचालित समाधान, आकर्षक कहानी कहने के प्रारूप, गेमिंग नवाचार, वर्चुअल प्रोडक्शन टूल्स और अगली पीढ़ी की कंटेंट टेक्नोलॉजी का भी प्रदर्शन कर सकेंगे.
The curated cohort represents a diverse cross-section of India's rapidly growing AVGCXR landscape. And from AI-enabled animation pipelines and real-time rendering engines to immersive XR experiences and gamified learning platforms, the exhibiting startups reflect the transformative potential of artificial intelligence in redefining content creation, distribution, and audience engagement.
जी हाँ, और इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 में वेव्स क्रिएटर्स कॉर्नर में भारत एआई के लिए विचार की एक भविष्यवादी श्रृंखला प्रदर्शित की जाएगी, जो मीडिया नवाचार को दर्शकों के साथ गहन जुड़ाव के साथ और गहराई से जोड़ देती है। स्टार्टअप्स और तकनीकी विकासकर्ता जीरो टच ऑटोनॉमस न्यूज रूम प्रस्तुत कर रहे हैं, जो एक अभूतपूर्व प्रणाली है। जी हाँ, ये लाइव इवेंट फीड को हिंदी, अंग्रेजी और तमिल में बहुभाषी ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन में मानवीय हस्तक्षेप के बगैर परिवर्तित कर देती है। इस कॉर्नर में एक भाषा दीवार भी है, जो दरअसल एक विशाल वीडियो ग्रिड है। ये एआई सांकेतिक भाषा अवतार के साथ 8 भारतीय भाषाओं में वास्तविक समय में लिप सिंक डबिंग को प्रदर्शित करती है।
And for interactive experiences, visitors can step into Samvad Setu to converse with historical legends, take the director's chair to alter movie scenes via voice commands, or utilize Swar Sangam to compose broadcast quality anthems in seconds. Additional highlights include an AI-powered podcast studio for real-time multilingual interviews, a conversational AI humanoid robot, and a voice cloning station where attendees can hear themselves speak fluently in diverse Indian languages. It's really amazing.
It is, yes. Aur Anuja, dekhi, khas baat ye hai ki iske alawa, Bhasha Setu aur Kala Setu chunautiyon ke jo vijeta startup hain, wo bhi is expo mein bhaag lenge aur wahan apne utpadon ka pradarshan karenge. Bhasha pradyogiki aur sanskritik takniki anuprayogon mein apne navonmeshi yani innovative solutions samadhanon ke liye manyata prapti startups AI संचालित उपकरणों का प्रदर्शन करेंगे। ये भाषाई सुगमता को बढ़ाते हैं, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हैं और विभिन्न दर्शकों के बीच भारतीय रचनात्मक सामग्री की पहुंच का विस्तार करते हैं।
And if we talk about other things, talking to Akashwani News, Pankaj Vasnik, the director and head of media analysis team at Sony Research India, has said that India holds immense potential to enable the upcoming generation and students to actively participate in research, development and mainstream artificial intelligence development.
I think this is amazing. Like, you know, like India has a lot of potential to make sure that, you know, like our upcoming generation students can be participate into the development as well as research, as well as, you know, mainstream AI development, right? I think this is a wonderful opportunity for startup students, you know, industry to come together and see what we are building here, as well as the delegates who are coming from outside of India. They can come see how India can participate into the AI.
So, Manish, across classrooms, coding labs, film sets, concert arenas and digital platforms, a new creative ecosystem is coming together. What connects these spaces is not just talent, but purpose. Institutions are being strengthened, markets are being organized and creators are being connected to capital and global audiences.
Ji haan, Anuja, aur yuva kalakar vaishvik utpadan prakriyaon mein pravesh kar rahe hain. Startups aisi bauddhik sampada ka ab nirman kar rahe hain jo seemaon se pare दर्शकों तक पहुंचती है। भारत अपनी रचनात्मक अर्थव्यवस्था को एक गौण क्षेत्र के तौर पर नहीं बल्कि एक रणनीतिक क्षमता के तौर पर स्थापित कर रहा है और ऐसा करके ये सुनिश्चित कर रहा है कि कल्पना को न सिर्फ व्यक्त किया जाए बल्कि उसे व्यवस्थित भी किया जाए और रचनात्मकता आने वाले दशक में विकास और वैश्विक जुड़ाव का एक स्थिर चालक बन जाए। और दोस्तों, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और उनसे ये जानने का कि क्या कुछ है उनके पास खास हमारे और आपके लिए। दोस्तों, नई दिल्ली में इन दिनों भारत एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन चल रहा है और ये सम्मेलन इस क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को तो रेखांकित करता ही है, साथ ही ये देश के युवाओं की क्षमता को भी दर्शाता है। देश में भविष्य के इन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की पौध को तैयार करने में स्कूलों में संचालित अटल टिंकरिंग लैब्स अहम भूमिका निभा रही हैं। तो पेश है हमारे रायपुर संवाददाता विकल्प शुक्ला की ये रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थापित भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा जिले के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब संचालित की जा रही है। इसे नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत स्थापित किया गया है। यहाँ छात्र किताबी ज्ञान से इतर हैंड्स ऑन लर्निंग के जरिए अपनी कल्पनाओं को धरातल पर उतार रहे हैं। पूरी तरह वातानुकूलित इस लैब में 3D प्रिंटर, रोबोटिक्स किट, रास्पबेरी पाई और अत्याधुनिक सेंसर जैसे विश्व स्तरीय संसाधन उपलब्ध हैं। यहाँ एक समय में 40 से अधिक विद्यार्थी एक साथ बैठकर विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित आधारित जटिल समस्याओं के समाधान खोजते हैं। इस लैब में छात्र न केवल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स सीख रहे हैं बल्कि अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी संचालित कर रहे हैं जहाँ वे अपने नवाचारों को दुनिया के सामने प्रदर्शित करते हैं। इस लैब की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण तब मिला जब यहाँ के कक्षा 11वीं के 3 छात्रों की टीम ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता मेक इन सिलिकॉन में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। हेल्थ केयर सेक्टर में उनके द्वारा किए गए नवाचार ने देश भर के विशेषज्ञों का ध्यान खींचा। यह लैब एक जीवंत शिक्षण केंद्र है और यह विकसित तथा आत्मनिर्भर भारत के लिए भावी वैज्ञानिक और इंजीनियर तैयार कर रही है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
दोस्तों, फ्रांस के अध्यक्ष इमैनुअल मैक्रों भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं इन दिनों और ये उनका मुंबई का पहला दौरा है जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने वाले हैं। मुंबई, जो ब्रिटिश काल की कई भव्य इमारतों के लिए जानी जाती है, फ्रांस के साथ एक खास रिश्ता साझा करती है। ये रिश्ता उस पहचान को भी रेखांकित करता है जिसके लिए मुंबई आज जानी जाती है, यानी बॉलीवुड। तो आइए सुनते हैं इस बारे में कुछ और बातें हमारे मुंबई संवाददाता से।
इतिहास हमें बताता है कि मुंबई पर पहले पुर्तगालियों का शासन रहा और बाद में इसे ब्रिटिशों को सौंप दिया गया जिन्होंने शहर को उसका वर्तमान स्वरूप दिया। तो हम ये मानकर चलते हैं कि मुंबई का फ्रांस से कोई विशेष संबंध नहीं रहा होगा क्योंकि ये कभी सीधे फ्रांसीसी शासन के अधीन नहीं रहा। लेकिन काला घोड़ा क्षेत्र की व्यस्त सड़कों के बीच वॉटसन होटल के जर्जर अवशेष आज भी खड़े हैं। इस अनोखी इमारत की अपनी कई विशेषताएं हैं लेकिन आज के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण है इसका संबंध ल्यूमियर बंधुओं से, जिन्हें प्रारंभिक सिनेमा का अग्रदूत माना जाता है और जो फ्रांस से थे। ये रोचक कहानी हमें बता रहे हैं मुंबई के इतिहासकार भरत गोठोसकर।
फ्रांस का एक बड़ा हाथ है हमारी फिल्म इंडस्ट्री की नींव रखने में। 1896 में फ्रांस के ल्यूमियर ब्रदर्स ने मुंबई के वॉटसन होटल में आशिया खंड का सबसे पहला फिल्म शो आयोजित किया था। इसके कुछ साल बाद पैथे पेरिस नाम के एक संस्था ने मुंबई में उनका ऑफिस खोला। इससे भारतीय फिल्म निर्माताओं को शूटिंग के लिए रॉ फिल्म्स का स्टॉक मिलना आसान हो गया। शायद इसी कारण मुंबई भारत में फिल्म मेकिंग की राजधानी बन गई है। पर मेरे ख्याल में फ्रांस ने मुंबई को दी हुई सबसे बड़ी सौगात है यहाँ की आर्ट डेको स्टाइल की इमारतें जो आप मरीन ड्राइव पे देख सकते हो। इस शैली का जन्म एक सदी पहले पेरिस में हुआ और आज अमेरिका के मायामी शहर के बाद सबसे ज्यादा आर्ट डेको स्टाइल की बिल्डिंग्स मुंबई में हैं, जिन्हें अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है।
आज जब मुंबई फ्रांस के अध्यक्ष इमैनुअल मैक्रों के स्वागत में पोस्टरों और बैनरों से सजी हुई है, तब वॉटसन होटल भारत और विशेष रूप से मुंबई के अपने यूरोपीय सहयोगी के साथ बहुआयामी और विशिष्ट संबंधों का एक मूक प्रतीक बनकर खड़ा है। परिक्रमा के लिए मुंबई से मैं अंकिता आपटे।
And infrastructure inefficiencies in the marine fisheries sector are causing the wastage of an estimated 25 to 35 million tons of fish globally every year. This has been revealed in a joint study by the Food and Agriculture Organization and the Bay of Bengal Program Intergovernmental Organization. The findings were presented at a two-day international workshop on marine fisheries value chain in the Bay of Bengal region held in Puducherry. We have a report.
Conducted during 2025-26 across 11 Asian countries including India, Bangladesh, Sri Lanka, Thailand and Vietnam, the study identifies systemic inefficiencies within the marine fisheries sector. According to the study report, fish loss and waste account for 20-35% of the total production in these nations, with some regions witnessing losses as high as 75%. Across Asia, between 20-60% of total catch is lost along the aquatic food value chain, turning what should be a valuable nutritional and economic resource into a silent crisis. A significant 43.5% of the losses occur at landing sites themselves, largely due to the inadequate icing facilities and high ambient temperatures. Presenting the findings at the workshop, the Bay of Bengal Program Intergovernmental Organization Director Dr. P. Krishnan pointed to infrastructure and institutional deficits across the Bay of Bengal region. He observed that the absence of adequate cold storage facilities at landing centers, insufficient ice plants, poorly integrated cold chain logistics, and the weak processing and packaging systems are among the major factors contributing to large-scale wastage. The study calls for a comprehensive upgrade of the fisheries value chain so that fishers can move from being price takers to value makers. It stresses the need for improved fleet management, planning and modernization of cold storage and ice production facilities at landing centers. The report also calls for the adoption of traceability systems and introduction of onboard processing and preservation technologies. In addition, it highlights the importance of stronger integration between fishing vessels and processing industries. Drawing lessons from countries such as Norway and Iceland, the report notes that post-harvest losses have been reduced to below 5% in these nations through full traceability and high-value processing. It underlines that technological adoption and policy alignment are critical for achieving similar outcomes in India and other Bay of Bengal countries. For Parikrama, this is Bibinastar, Akashwani News, Puducherry.
To chaliye Anuja, ab le chalte hain apne shrotaon ko Madhya Pradesh. Ji haan, jahan Ujjain mein Mahashivratri se shuru ho chuka hai. विक्रमोत्सव एक रिपोर्ट।
धार्मिक आस्था, संस्कृति और परंपरा की पावन नगरी उज्जैन एक बार फिर उत्सव के रंग में रंग चुकी है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शुरू हुआ विक्रमोत्सव 2026 पूरे वैभव के साथ 19 मार्च तक चलेगा और इसकी गूंज 30 जून तक सुनाई देगी। पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर इस भव्य आयोजन का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा,
विक्रम संवत को मनाने के लिए लगभग 21 साल पहले 2005 से जो ये कारवा अवंतिका नगरी से दोबारा बड़ा, आप सबकी मौजूदगी में अभी तक का सबसे बड़ा विक्रमादित्य का विक्रमोत्सव मेला यहाँ से प्रारंभ हो रहा।
इस शुभारंभ के साथ ही 139 दिनों तक चलने वाले सांस्कृतिक सफर की भी शुरुआत हो गई। शिव की आराधना और संगीत की मधुर स्वर लहरियों के बीच सुप्रसिद्ध संगीतकार प्रीतम की प्रस्तुति से महोत्सव का आगाज हुआ। उज्जैन की फिजाओं में इन दिनों मेले, कलश यात्राएं, नाट्य समारोह, कवि सम्मेलन, चित्र प्रदर्शनियां और विज्ञान के साथ साथ इतिहास का समागम भी देखने को मिल रहा है। महाकाल वन मेला हो या विक्रम व्यापार मेला, हर आयोजन परंपरा और आधुनिकता का संगम पेश कर रहा है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर मातृशक्ति कवित्री सम्मेलन, ड्रोन शो और विशाल मिश्रा की सुरीली आवाज भी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करेगी। और खास बात, 13 से 17 मार्च तक होने वाला अंतर्राष्ट्रीय पौराणिक फिल्म महोत्सव, जिसमें 25 से ज्यादा देशों की फिल्में उज्जैन की धरती पर एक साथ दिखाई जाएंगी। महाभारत पर आधारित फिल्मों का विशेष प्रदर्शन इस महोत्सव की भव्यता को और बढ़ाएगा। आस्था, कला, ज्ञान और परंपरा का ये अनोखा संगम उज्जैन को सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि उत्सव की जीवंत पाठशाला बना रहा है। परिक्रमा के लिए अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं क्या है वहां की हलचल।
Yes, and in the ICC Men's T20 World Cup, New Zealand won by 8 wickets, defeating Canada in the Group D match in Chennai today. And if we come to the business news of the day, benchmark domestic equity indices paired early gains in volatile trade. At the end, Sensex climbed 173 points or 0.21% to close at 83,450 and the Nifty added 42 points or 0.17% to settle at 25,725.
और दोस्तों, अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
On 17 February 1931, Mahatma Gandhi met the British Viceroy, Lord Irwin, at the Viceroy's house. Gandhiji declined to have a cup of tea and told the Viceroy that he would rather prefer a glass of lemon water. Having just been jailed for the Dandi March and the salt satyagraha, he said to have carried his own salt in a packet and used it to mix in the lemon water.
Images of the modestly clad Gandhi at the grand new Viceroy house rankled several important people in London. Gandhiji and the Viceroy Irwin met 8 times until the 5th of March 1931, leading ultimately to the Gandhi-Irwin pact.
We also remember Naga spiritual and freedom fighter Rani Gaidin Liu, who died on the 17th of February 1993. Gaidin Liu, who belonged to the Rong Mei tribe, led an armed uprising against the British in Manipur, Nagaland, Amazon.
Rani Gaidin Liu was born on the 26th of January 1915 in present-day Tamilong district of Manipur. In 1927, at the age of 13, Gaidin Liu, along with her cousin Haipu Jadunlang, joined the Heraka movement, which aimed at a revival of the Naga tribal religion and to establish self-rule of the Nagas, ending the British rule. At the mere age of 16 years, she was arrested in 1932 by the British and sentenced to life imprisonment. Between 1932 and 1947, the Naga freedom fighter was kept at several prisons.
After being released in 1947, she continued to work for the betterment of the community. Jawaharlal Nehru described Gaiden Liu as the daughter of the hills and gave her the title of Rani for her courage. She was also awarded a Padma Bhushan. We salute the great freedom fighter.
We also remember freedom fighter and social worker Perin Ben Captain, who was the granddaughter of renowned Indian intellectual and leader Dada Bhai Naroji.
Perin Ben was born on the 12th of October, 1888 in Kutch district. She studied at the University of Paris. While in Paris, she came in contact with Bhikaji Kama and started participating in nationalistic activities. She came to India in 1911 and later met Mahatma Gandhi and was influenced by his ideals. In 1919, she started working with Mahatma, and in 1920, she joined the Swadeshi movement and started wearing khadi. In 1921, she assisted in establishing the Rashtriya Stri Sabha, a women's movement based on Gandhian ideals.
Perin served in a number of councils of the Indian National Congress and was the first woman president of the Bombay Provincial Congress Committee in 1930. She was imprisoned for her participation in the civil disobedience movement. When Gandhi Seva Sena was reconstituted in the 1930s, she was made its honorary general secretary, a post she held till her death in 1958. We salute the great freedom fighter.
We also remember freedom fighter Chand Mia, who hailed from Tripura. On 17th of February 1932, around 15,000 farmers gathered to celebrate the Farmers' Day in defiance of the British orders. Sensing disturbances, the police opened fire to disperse them, and Chand Mia was killed. We salute the great martyr.
और आज पुण्यतिथि है मित्रों, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ और बिहार के भूतपूर्व पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की, जो इतने सरल थे कि आम लोगों की समस्याएं भी बड़ी तल्लीनता से सुनते थे, और इसीलिए उनको जननायक भी कहा गया। भारत सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को वर्ष 2024 में उनकी मृत्यु के 35 साल बाद भारत रत्न से सम्मानित किया। वे बिहार में एक बार उपमुख्यमंत्री, दो बार मुख्यमंत्री और दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता भी रहे। 1952 की पहली विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद वे बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे।
And we also pay tribute to Budhu Bhagat, another Indian freedom fighter who had led guerrilla warfare against Britishers. He was leader of Kol Rebellion and Larka Rebellion in 1831-32 in Chhotanagpur. Kol Rebellion was spread to Ranchi, Hazaribagh, Palamu and Manbhum. And in 1831, Budhu Bhagat led the Kol Rebellion against the British.
और दोस्तों, आज है जयंती हिंदी सिनेमा के जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रवि टंडन की, जिनका जन्म हुआ था 17 फरवरी 1935 को उत्तर प्रदेश के आगरा में, और उन्होंने अनेक सुपरहिट यादगार ऐसी फिल्में दी जिनमें कुछ गहरे संदेश भी थे। जैसे उनकी फिल्मों को याद करें तो नजराना, मुकद्दर, मजबूर, खेल खेल में अनहोनी, खुद्दार और जिंदगी। तो आइए सुनते हैं उनकी फिल्मों से कुछ यादगार संवाद और गीत।
माइकल, सुना है चोरों के भी कुछ असूल होते हैं?
तुमने ठीक ही सुना है, चोरों के ही तो असूल होते हैं।
मैंने रिवॉल्वर पहली बार उठाया है, लेकिन इतना जानता हूं कि ट्रिगर दबाने से गोली चलती है।
अगर तुमने मुझ पर गोली चलाई तो तुमसे ज्यादा पागल और कोई नहीं होगा, इसलिए कि सिर्फ मैं जानता हूं कि तुम बेगुनाह हो।
आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती है।
मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बिरज का बाका धमाल तेरी गगरी रे।
एक मैं और एक तू, ही था।
So this was a medley from his movies, and Ravi Tandon wasn't just a filmmaker, he was a storyteller who infused emotion into every frame.
जी हाँ बिल्कुल, और आप तो ये जानते ही होंगे कि मशहूर अभिनेत्री रवीना टंडन के पिता होने का भी सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ. दोस्तों अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुझे यानी मुनीश शर्मा को
और अनुजा कुमार को.
तो दोस्तों इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुनना चाहें तो लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट या फिर पहुंचिए हमारे मोबाइल ऐप पर और हमें भेजिए अपनी प्रतिक्रियाएं. दीजिए आज्ञा. नमस्कार, नमस्कार.